ओम शांति। आज 2 सितंबर 2026 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने,
तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है, उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है, वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए, ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है, बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है, तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही है, तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको यह राज्य भाग्य देने। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारे सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है, सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं, यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र, अगर परम पिता समझें, तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉडफादर, फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है? अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है, फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार है, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे, भल वहां भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है, फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सतयुग का सब खलास हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे, सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं, फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं, बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं, फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं, अभी तुम वॉइसलेस बनते हो, उसकी प्रालप्त फिर 21 जन्म चलते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्होंने मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, यह सिर्फ भारत में ही होता है, यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले आते ही बाद में है, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं, वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रसम रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रसम रिवाज ही बदल जाती है, फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे, एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे, फिर कलयुग में देखो गणेश हनुमान चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं, भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना, जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है, ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है, अब मुझ बाप को याद करो, भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है, नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं, अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो, अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि यह सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं, जिसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सत्व प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में, ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते भगवान कोई न कोई रूप में कभी आकर मिलेगा, अब कौन राइट। वह कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ वाले कहते कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या, प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नोंद, उन्हों को यह मूसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई, यह सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़े ही है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कह एक बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते हैं यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नोंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ, यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, ज्ञान की प्रालब्ध है चढ़ती कला। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारे विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत तमु प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है, इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बना कोई लूट ना सके, कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहां विघ्न की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतुप्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतुप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। आज का व्यक्त इशारा, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। दातापन के संस्कार इमर्ज कर मनसा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो। वाणी द्वारा कमजोर आत्माओं को खुशी में, परेशान को शान की स्मृति में और दिल शिकस्त आत्माओं को उमंग उत्साह में लाओ। संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराओ तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। ओम।